समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात, कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी सुनने वालों का नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार, इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करेंगे, मौसम का हाल जानेंगे और जानी मानी हस्तियों के बारे में भी आज बात करेंगे। आज के संघ के साथ मैं हूं फरहत नाज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा। नमस्कार सायरा।
Namaskar, Adab, and a very warm welcome to all the listeners who have joined us in this very fresh episode of Aaj Savere. And hasbe dastoor hum laaye hain aapke liye taza tareen khabrein. Of course, aapke shahar ki bhi khabrein hongi in our Metro News section. Apart from that, of course, we are remembering some of the personalities. And the sabse dukhat khabar jo filhal raat se hum log ko mili hai, that is about Ratan Tata's passing away. But as we all say that this is just a mortal being, aur Ratan Tata jaisi hastiyan kabhi bhi जो है मरती नहीं है बिकॉज दे विल लिव ऑन थ्रू दे कमेंडेबल वर्क दैट दे हैव डन इन नेशन बिल्डिंग एंड नॉट जस्ट बिजनेस।
युवाओं के सारा प्रेरणा स्रोत रहे हैं।
एब्सोल्युटली, तो उनके बारे में भी बात करेंगे, ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर। और भाई, अब तो फेस्टिव सीजन की हवा है, बुरे जोर शोर से लोग
अष्टमी की तैयारी कर रहे हैं। दशहरा है, दिवाली है, लगातार जो है आप उसके बाद छठ पूजा भी है।
यस, एब्सोल्युटली, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन दिल्ली आर हेडिंग टुवर्ड्स सीआर पार्क, चितरंजन पार्क, तो वहां के तो आज अष्टमी की धूम देखने लायक होती है। वेल, ये सब बातें करेंगे, बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाओस की 2 दिन की यात्रा पर वियतियाने पहुंचेंगे। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के सचिव जयदीप मजूमदार ने बताया कि अपने प्रवास के दौरान श्री मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री मजूमदार ने कहा कि आसियान भारत सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10वीं बार हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्री मोदी लाओस के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर वियतियाने जा रहे हैं। श्री मजूमदार ने यह भी बताया कि श्री मोदी आसियान देशों के अन्य शासन अध्यक्षों के साथ भारत और आसियान के बीच संबंधों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और परस्पर संबंधों की भावी दिशा तय करेंगे।
President Draupadi Murmu will be on a 7-day state visit to Algeria, Mauritania and Malawi from Sunday. In the first leg of her visit, President Murmu will visit Algeria from 13th to 15th of October at the invitation of President of Algeria, Abdelmadjid Tebboune. During the visit, President Murmu will hold bilateral talks with her counterpart. Briefing reporters in New Delhi, Secretary Economic Relations Damu Ravi said, India is looking at a stronger partnership with Africa. Renowned industrialist and philanthropist Ratan Tata passed away last night in Mumbai at the age of 86. He had been undergoing treatment at a private hospital and was in critical condition. The Maharashtra government has announced 1-day state mourning today and Ratan Tata's final rites will be performed with full state honours.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि रतन टाटा के जाने से भारत ने कॉरपोरेट विकास को, राष्ट्र निर्माण और उत्कृष्टता को नैतिकता के साथ जोड़ने वाली एक महान हस्ती को खो दिया। उपराष्ट्रपति ने अपने शोक संदेश में कहा कि रतन टाटा के देहांत से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। श्री धनखड़ ने कहा कि रतन टाटा भारतीय उद्योग के महान व्यक्ति थे जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अविस्मरणीय योगदान किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर कहा है कि रतन टाटा को कुछ बड़ा करने और समाज को लौटाने में गहरी रुचि थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि टाटा ने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और मवेशी कल्याण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई।
एंड यस फरहत, ही वॉज जस्ट नॉट एन इंडस्ट्रियलिस्ट, बट अगर आप नजर उठा के मॉडर्न इंडिया को देखिए तो इट कैन नॉट बी कम्प्लीट विदाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाटा ग्रुप एंड अ लॉट वी ओ टू रतन टाटा वेन ही टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ दैट ग्रुप बिकॉज इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से ही जो है टाटाज वर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, बट आई थिंक रतन टाटा लिव्ड अप टू दैट लेगेसी टू हिज फुलेस्ट एंड ही वॉज अ प्रोलिफिक इन्वेस्टर हु इन्वेस्टेड इन ओवर 30 स्टार्टअप most in a personal capacity and some via his investment company. He was a supporter of education, medicine and rural development and is considered a leading philanthropist also in India. Tata supported University of New South Wales Faculty of Engineering to develop capacitive deionization to provide improved water for challenging areas. Tata Hall at the University of California in San Diego is a state-of-the-art research facility that was opened in November 2018. The building is named after the Tata Trust, who donated $70 million to University of San Diego in 2016 to establish the Tata Institute for Genetics and Society. So, if you look whether even in India, if you see that, you know, the first luxury chain of hotels, the Taj Hotels, you talk about it, or Titan Ghadiyon, or Tanishq in the jewelry, or as many buses, or Tata Steel, Tata Energy. So, anything that is Tata, I think, people close their eyes and विश्वास करते
हैं. Absolutely, Sarah. And in their case, it was said that they were very clear in the rules. In fact, in 2009, they made the most expensive car वादा किया था ताकि जो मिडिल क्लास फैमिली के जो सपने हैं वो कार खरीदने का पूरा हो सके और एक लाख रुपए में टाटा नैनो लॉन्च की. इसके अलावा उनका मानना था कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव जो है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ईसीजी में एक सीधी रेखा का मतलब होता है हम जीवित नहीं है और वो कहते थे कि ऐसी कई चीजें हैं जो अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिले तो शायद मैं अलग ढंग से करूंगा लेकिन मैं पीछे मुड़कर ये नहीं देखना चाहूंगा कि मैं क्या नहीं कर पाया.
यस एब्सोल्युटली. इनफैक्ट इवन इफ यू लुक एट you know about the technological advances that we have made, it wouldn't have been you can say completed without the contribution of TCS, which actually gave the largest ever donation by a company to Carnegie Mellon University for a facility to research cognitive systems and autonomous vehicles. TCS donated $35 million for this grand 48,000 square foot building that is called TCS Hall.
Aur iske alawa unke netritv mein Tata Samuh ne Bharat ke graduate chhatron ko financial madad pradan करने के लिए कार्नेल विश्वविद्यालय में टाटा स्कॉलरशिप फंड की भी शुरुआत की थी.
एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ रतन टाटा द टाटा ग्रुप फॉर्म द एमआईटी टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन एट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज एमआईटी विद अ मिशन टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ रिसोर्स कंस्ट्रेंट कम्युनिटीज विद एन इनिशियल फोकस ऑन इंडिया. तो अगर कहा जाए रतन टाटा के बारे में ये उनको जो है सिर्फ कुछ शब्दों में समेटना या कुछ मिनटों में समेटना मुमकिन नहीं होगा बिकॉज अ लाइफ लिव्ड वेरी incredibly.
बिल्कुल और ऐसी शख्सियत को भुलाया नहीं जा सकता है. और अब आगे बढ़ते हैं. इस वर्ष सैन्य कमांडरों के दूसरे सम्मेलन का पहला चरण आज से सिक्किम के गंगटोक में हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा. इस दो दिवसीय सम्मेलन में सेना की मौजूदा परिचालन तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और महत्वपूर्ण रणनीतियों पर भी विचार विमर्श होगा.
The National E-Governance Division has announced the integration of Umang App with DigiLocker to provide citizens seamless access to a wide range of government services. The Electronics and IT Ministry said that this collaboration will allow users to manage multiple services through a single platform. It said Umang App is accessible to all Android users and its services can be accessed through the DigiLocker app. The ministry said DigiLocker is a flagship initiative under the Digital India program to provide secure cloud-based storage. On the other hand, the Umang App provides a single platform to access pan-India e-gov services.
भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बांग्लादेश को 86 रनों से हरा दिया. कल रात नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में इस जीत के साथ भारत की पुरुष टीम ने तीन मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली है. भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा और आखिरी T20 मैच शनिवार शाम 7 बजे से हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.
And in ICC Women's T20 World Cup, India registered their biggest ever margin of victory in Women's T20 World Cup history, beating Sri Lanka by 82 runs in the Group A match at the Dubai International Cricket Stadium in Dubai last night. Earlier, Indian team won the toss and opted to bat. Batting first, India put up a score of 172 runs, supported by the unbeaten 52 of Harmanpreet Kaur and 50 runs of Smriti Mandhana. Chasing a target of 173 runs, Sri Lanka were all out for 90 runs in the 19.5 overs. And Deepika Sharma bagged a wicket each. Harmanpreet Kaur was declared the player of the match. In key fixtures today, Bangladesh will take on West Indies in a Group B match in Sharjah. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m.
और अब आगे बढ़ते हैं महानगरों का रुख कर लेते हैं. सारा क्या है आपके पास चेन्नई बेंगलुरु और हैदराबाद में.
यस लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी विद शहरे चेन्नई. द तमिलनाडु गवर्नमेंट वुड रेकमेंड एक्शन अगेंस्ट मेडिकल कॉलेजेस फॉर चार्जिंग एक्सेसिव फीस. स्टेट मिनिस्टर एम सुब्रमण्यन सेड दैट द सिलेक्शन कमिटी हैड रिसीव्ड टू कंप्लेंट्स फ्रॉम पेरेंट्स अबाउट कॉलेजेस दैट डिमांडेड प्रोहिबिटिवली हाई फीस. In July, the Committee on the Fixation of Fees for Self-Financing Professional Colleges, headed by Justice R. Pongiappan, recommended no increase in tuition fees for MBBS and BTS courses. I think this is a very commendable move, Farhad, because especially for middle class people who dream of their children to, you know, have a good career, but they are sometimes, you can say, nubbed because of the high fees. So it's very necessary that education ko affordable banaya jaye.
Bilkul, taki sabhi log is cheez ko afford kar sakein aur shiksha ka adhikar to aise sabhi ke paas hai.
Absolutely, and that is how we will probably have good professionals in the, you can say, the Indian skyline. And Chennai is expected to see rains this week with temperatures ranging between 25 and 35 degrees Celsius. The prediction is that there may be localized heavy downpour in many places. A weather system is developing over the Arabian Sea that will bring strong southerly winds across both the coastline and the interiors as well. So, denizens of Chennai, be prepared for some more showers and ghar se chhata, raincoat jo bhi hai jisko aapne shayad rakh diya tha wapas usko phir se nikal lijiye.
Aur iska asar ho sakta hai baaki shaharon mein bhi dikhai de.
Yes, absolutely. Moving on to Bengaluru. The president of the Maldives, Dr. Mohammed Moizu, and First Lady Sajida Mohammed paid a courtesy visit to Raj Bhavan in Bengaluru yesterday, and host Thavarchand Gehlot, the governor of Karnataka, welcomed them in the presence of Karnataka Chief Minister Siddaramaiya and Higher Education Minister Dr. M.C. Sudhakar. In his address during the visit, Governor Gehlot highlighted the deep-rooted friendship between India and the Maldives. He further said that the visit of Maldives President to India and his meetings with the President, Vice President and Prime Minister has solidified the cordial relations between the two nations. He mentioned the role played by Maldives in India's Neighbourhood First and Sagar initiatives. The governor said that the currency swap agreement between the two countries is a testament to the strong economic cooperation. Moving on to the city of Hyderabad. The India Meteorological Department, IMD, has issued a thunderstorm alert in 27 districts of Telangana state for today. So, as you were saying, the effect of this is probably going to see other cities as well. So, yes, indeed, Hyderabad is probably going to see that effect. As per an IMD report, thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds are likely to occur at isolated places in most parts of the state. The officials informed that rain is likely to occur in some places in most of the districts, including Adilabad, Kumaram Bhim, Asifabad, Mancherial, Nirmal, Nizamabad, Jagatial, Rajalla Sirsila, Karimnagar, Pedapalli, among others, and also the capital city, Hyderabad. So, Farhad, ye to sa hamare teen shehron ka haal, Chennai, Bengaluru, and Hyderabad. What is the latest that you have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
जी सारे सबसे पहले राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर का रुख कर लेते हैं. भारतीय रेलवे पहली अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चला रहा है. इसके अंतर्गत उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल द्वारा स्टेशन परिसर में और उसके आसपास कैंटीन खाद्य स्टॉलों की गहन सफाई की गई. रेलवे ने बताया कि सफाई गतिविधि में सतत सुधार के लिए सफाई के दौरान बर्तनों की सफाई और कचरा निपटान की जांच की गई. इसके अलावा यह सुनिश्चित किया गया कि खाद्य विक्रेता, रसोई और कैंटीन के कर्मचारी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें और समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवाते रहें. रेलवे के अनुसार इन कर्मचारियों को स्रोत पर ही कचरे को अलग करने के लाभों के बारे में भी अवगत कराया गया. और अब महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं. महाराष्ट्र के कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना में नामांकित 46,000 छात्र जो वर्तमान में विभिन्न संगठनों में इंटर्नशिप कर रहे हैं, उन्हें उनके वजीफे की पहली किस्त सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी. एक संवाददाता सम्मेलन में श्री लोढ़ा ने कहा कि राज्य सरकार इस उद्देश्य के लिए 42 करोड़ रूपये का फंड वितरित करेगी. उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए लगभग 3 लाख से अधिक प्रशिक्षु ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से करीब 1,79,318 लोगों को नियुक्त किया गया है. और अब आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं. पश्चिम बंगाल में कल कोलकाता के चांदनी चौक इलाके में पुलिस और डॉक्टरों के बीच झड़प हुई. आरजीकर मेडिकल कॉलेज के आंदोलनकारी डॉक्टरों की पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर शहर में दुर्गा पूजा पंडाल यात्रा शुरू करने के समय ये झड़प हुई. पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर संघ ने घोषणा की थी कि दुष्कर्म और हत्या की शिकार डॉक्टर और दक्षिण 24 परगना जिले का जयनगर के कुटाली की चौथी कक्षा की छात्रा के लिए न्याय और त्वरित सुनवाई की मांग को लेकर ग्रेटर कोलकाता के उत्तर से दक्षिण तक के एक पूजा परिक्रमा आयोजित की जाएगी. कोलकाता में 7 जूनियर डॉक्टर, उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 2 डॉक्टर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी हैं. उनकी स्वास्थ्य स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है. दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में भी मेडिकल कॉलेजों के वरिष्ठ शिक्षकों ने प्रतीकात्मक सामूहिक इस्तीफे दे दिए हैं. महानगरों की खबरों के बाद अब मौसम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो आज आसमान यहां पर साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और मुंबई की बात करें तो बादल छाए रहेंगे, वहां पर बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कोलकाता में भी बारिश हो सकती है, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो ये तो थी बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। सायरा, कैसा रहेगा चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में मौसम?
वेल फरहत, वी ऑल नो दैट द वेदर सिस्टम दैट इज डेवलपिंग ओवर अरेबियन सी विल हैव इट्स इफेक्ट इन ऑल द थ्री सिटीज ऑफ चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद एंड मोस्ट ऑफ द सिटीज इन साउथर्न इंडिया। एंड इन चेन्नई देर इज अ प्रेडिक्शन ऑफ थंडरस्टॉर्म विद रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 25 वाइल मैक्सिमम विल बी अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस। Bengaluru will also have a cloudy sky and one or two spells of rain or thunder showers are expected. The minimum temperature was 21 degrees Celsius while maximum will be around 30 degrees Celsius. Hyderabad also is going to have a cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature in Hyderabad city will hover between a minimum of 23 and maximum of 32 degrees Celsius. Today is World Mental Health Day. It is an international day for global mental health education, awareness and advocacy against social stigma. It was first celebrated in 1992 at the initiative of the World Federation for Mental Health, a global mental health organization with members and contacts in more than 150 countries. This day, every October, thousands of supporters come to celebrate the annual awareness program to bring attention to mental illness and its major effects on people's lives worldwide. In addition, this day provides an opportunity for mental health professionals to discuss and shed light on their work, making mental health a priority worldwide. In some countries, this day is part of an awareness week, such as Mental Health Week in countries like Australia. And the theme, if we talk about the theme this year, it's time to prioritize mental health in the workplace. I think it's very important, Farhad, because sabki jo hai, sab log career oriented hai, they are working professionals, but it's very important that the most of the time where people are spending, that is their workplace, should be a very, very healthy place in terms of mental, you can say, and emotional development.
Bilkul, karyasthal par agar mansik swasthya theek hai aapka, to mujhe lagta hai ki har kaam mein aapki dilchaspi hogi aur aap bahut achhi tarike se apne kaam ko nibha payenge.
Yes, absolutely. And of course, जो एक social stigma है, जो हम लोग एक हिंदी में word होता है पागल, वो use कर देते हैं, which is very bad because जिस तरह हम लोग को सर्दी खांसी बुखार होता है वो शारीरिक you can say illnesses होती हैं, तो उसी तरह mental illness भी किसी को हो सकती है. So instead of labeling them as somebody who is mad or crazy, we should go out and reach out to such people because with the advent of social media, what we are seeing Farhad, that people have stopped interacting with each other.
बिल्कुल. और सबसे ज्यादा मुझे जो लग रहा है इसका कारण हो सकता है मोबाइल फोन्स, क्योंकि आपस में लोग बातचीत करना जो है वो नहीं चाहते हैं और वो फोन आपसे बातचीत करने के अलावा वो उतने ही घंटे में आप फोन का इस्तेमाल करेंगे, या तो इंस्टाग्राम रील्स देखेंगे या तो फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे
विदाउट रियलाइजिंग दैट मैन इज अ सोशल एनिमल. और जब तक कि हम लोग खुशियां और दुख बांटते नहीं है, यू नो, तब तक ही इंसान को सुकून मिल ही नहीं सकता है. सो वो एक सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग इट्स लाइक अ मिराज. बट most of the people, if you see that who go into depression, are those people who don't share a lot with others. So if you were probably, I would through this platform, through our show, we would urge our listeners that if they spot anyone who is keeping to himself and not very, you know, not mingling with others, to aap khud reach out kariye ki
shayad baat karne ki koshish kijiye.
Absolutely. Maybe they will open up about any problems and we can just go and listen to them. कहते हैं ना कि नेवर डिप्राइव एनी वन ऑफ होप, दैट माइट बी दी ओनली थिंग ही हैज.
जी बिल्कुल सारा, और बात करने से ही जो होती है मन हल्का होता है.
That's true. So that's how we paid tribute to World Mental Health Day today. And if we talk about the other events that took place on this day in history, so देखते हैं क्या कुछ खास था आज के दिन.
जी सर, सबसे पहले बात 1756 की कर लेते हैं. ब्रिटिश गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता पर पुनः कब्जे के लिए मद्रास से आज ही के दिन कूच किया. वहीं 1846 में ब्रिटिश खगोल विद विलियम लासल ने नेपच्यून के प्राकृतिक उपग्रह की खोज की. 1910 में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में प्रथम अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ. वहीं 1942 में सोवियत संघ ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने राजनयिक संबंधों की शुरुआत की.
1954, first President's Award was awarded to the film Shyamchi Aayi. In 1964, the Olympics started in Tokyo. In 1964, Ravi Shankar performed at Town Hall in New York.
वहीं 1964 में टोक्यो में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का पहली बार दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण हुआ.
And in 1970, Fiji gained independence from Great Britain. Also in 1978, Rohini Khadelkar, who was then 15 years old, she became the first woman to win the National Chess Championship. तो आजकल हम लोग न्यूज़ में पढ़ते हैं कितने सारे ग्रैंड मास्टर्स जो बहुत ही यंग But even in 1978, she was just 15 years old and she became the first woman to win the National Chess Championship.
जी बिल्कुल सारा. और आप आगे बढ़ें तो 1991 की बात कर लेते हैं. भारत ने आज ही के दिन विश्व कैरम प्रतियोगिता का टीम खिताब भी जीता.
And in the year 2000, the Netherlands Antilles, which was formerly an autonomous part of the Kingdom of the Netherlands, consisting of a group of five islands in the Caribbean Sea, was officially dissolved. Now we have come to that section where we discuss some of the personalities who either have their death or birth anniversaries or their birthdays today. And is fehrist mein sabse pehle hum log yaad kar rahe hain Badruddin Tayyab ji ko, who was a lawyer, activist and politician during the British Raj. He was the first Indian to practice as a barrister of the High Court of Bombay. He also served as the third president of the International Congress. And if we talk about his contributions, Tayyab ji was instrumental in building the national scope of the Congress by working to gain support from both Hindus and Muslims. And during his time as president of the INC between 1887 and 1888, he focused on uniting the Muslim community as well.
और सारा आज ही के दिन भारतीय चिकित्सक द्वारकानाथ शांताराम कोठनीस का भी जन्म हुआ था. वे दूसरे विश्व युद्ध के सिपाहियों का इलाज करते करते प्राण त्याग देने वाले निस्वार्थ सेवक थे. द्वारकानाथ कोठनीस को द्वितीय चीन जापान युद्ध के दौरान उनकी सेवाओं के लिए चीन में बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता है.
We are now remembering a personality who is a very, very marvelous writer, novelist, who is known for his work that was set in the fictional South Indian town of Malgudi. और उनके बारे में थोड़ा सा और बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ये सुनते हैं जिससे आपको अपना बचपन याद आ जाएगा.
जी हाँ, और हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार आर के नारायण की. और उनका पहला उपन्यास स्वामी और उसके दोस्त 1935 में प्रकाशित हुआ. इस उपन्यास में एक स्कूली लड़के स्वामीनाथन का बेहद मनोरंजक वर्णन है तथा उपन्यास के शीर्षक का स्वामी उसी के नाम का संक्षिप्त भी है. आर के नारायण की कृति पर आधारित मालगुड़ी डेज इन्हीं में से एक ऐसा धारावाहिक था जो खासा लोकप्रिय हुआ और जिसका इस दौर के बच्चों पर भी गहरा असर पड़ा.
Yes, so that was R.K. Narayan, whose birth anniversary is today. Today we are also remembering Vasant Kumar Shivashankar Padukone. And if you're wondering who is he, well, unko duniya janti hai Guru Dutt ke naam se. Yes, today is Guru Dutt's death anniversary. An actor, director, producer, choreographer and writer par excellence. He is regarded as one of the greatest filmmakers of Indian cinema. Dutt was lauded for his artistry, notably his usage of close-up shots, lighting and depictions of melancholy. And he directed a total of 8 Hindi films, several of which have gained a cult following internationally, which include Pyasa, and which Pyasa actually made its way into the Time magazine's 100 greatest movies list. And even Kagaz Ke Phool, jo us waqt box office pe hit itni nahi hui, but today it is actually taught to film students as a cult film, because in those days aap imagine kar sakti hai, he was inspired by by the western, by Orson Welles particularly, aur unhone is puri film mein khas taur se jo gana hai waqt ne kiya kya hasi sitam usme natural light ka use kiya. So can you imagine the artistry and you can say his creativity. And Chaudhary Ka Chand Sahib Bibi Ghulam are some of his notable films. Aur baat ho rahi hai unki films ki, to kyun na unki films mein se ek acha sa gana suna jaye.
Bilkul Zara.
Bhumra bada nadan hai, bagiyan ka mehman hai, phir bhi jaan na kaliyan ki muskaan hai.
Bhumra bada nadan. और आज ही के दिन हमें अलविदा कहा था लाखों करोड़ों सुनने वालों के दिलों पर राज करने वाले प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह ने। गजलों ने न सिर्फ उर्दू के कम जानकारों के बीच शेर व शायरी की समझ में इजाफा किया बल्कि गालिब, मीर और फिराक जैसे शायरों से भी उनका परिचय कराया।
होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों,
जगजीत सिंह हाईलाइटेड इन हिज म्यूजिक दैट यू नो गजल, पहले लोग सोचते थे एक सिर्फ उर्दू जबान वो है जो लोगों के समझ में नहीं आती, बट आई थिंक जगजीत सिंह ब्रॉट उर्दू इन एवरी होम एंड ही पॉपुलराइज द गजल लाइक नो अदर सिंगर। उनसे पहले बहुत से गजल गायक रहे, बहुत महान महान गायक रहे, बट जगजीत सिंह इज वन नेम दैट प्रॉब्ली चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो सब लोग जो है उनकी गाई हुई गजलें गाते थे। एंड वी हैव अनदर गजल इन हिज मेलिफ्लुअस वॉइस, लेट्स लिसन टू इट।
तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, आज फिर दिल ने एक तमन्ना।
और आज हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री रेखा का जन्मदिन है। रेखा का असली नाम भानु रेखा गणेशन है। उनका जन्म चेन्नई में 10 अक्टूबर 1954 में हुआ।
Acknowledged as one of the finest actresses in Indian cinema, she has starred in more than 180 films and recipient of several accolades, including one National Film Award and 4 Filmfare Awards. She has often played strong and complicated female characters. In fact, she was the first female jisne jo revenge drama tha Khoon Bhari Maang, the first female artist who actually started that trend of you can say women oriented films jinhone lead you can say kirdar nibhaya.
और इनका बहुत ही खूबसूरत सा गीत है जो मुझे बहुत पसंद है, मन क्यों बहका, आइए सुन लेते हैं।
मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को, किसने बंसी बजाई आधी रात को, किसने बंसी बजाई आधी रात।
And well, a very beautiful song from the film Utsav. लेकिन जब रेखा का जिक्र होता है फरहत तो सबसे पहले उमराव जान का ही तसव्वुर आता है। That wonderful film directed by Muzaffar Ali based on the life of the famous courtesan उमराव जान अदा।
बिल्कुल, और इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। सुनते हैं। और इसके अलावा 1981 में फिल्म सिलसिला में रेखा अमिताभ के साथ पर्दे पर नजर आईं, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। आइए सुन लेते हैं इसी फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत।
देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, झूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, खाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए।
और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, कहना होगा आपको अलविदा।
यस, स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात हिंदी न्यूज बुलेटिन followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning, listeners. Have a great day ahead. Namaskar.